बिल्कुल पूरा फैमिली डे आपने मनाया। और जनाब वो अरफा जी मुझे अभी मैसेज देखे गए हैं उनके कोई जो वो रिलेटिव्स हैं इमरान खान टाइप के के पता नहीं आमिर खान टाइप के कहते हैं कि उनकी मिठाई बहुत जबरदस्त है। तो हम
आमिर खान साहब आप थैंक यू सो मच, आपकी मिठाई पूरे स्टाफ ने टेस्ट की एंड बहुत ही ज्यादा टेस्टफुल, आप दिल से लेके आए हैं, थैंक यू सो मच
जी। अच्छा जनाब ट्रूडो साहब का जो ऑफिस है उसने आज कहा है जिसमें कि लोगों को बड़ी हैरत हुई कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है जॉर्जियो मिलोनी वो आ रही हैं कनाडा में। अच्छा ये जब ये पीछे अभी लास्ट ईयर की बात है कि ये इनकी एक समिट हुई थी वहां पे G7 की और उससे पहले भी ये LGBTQ जो था उसके इश्यूज के ऊपर इन दोनों कंट्रीज के बड़े लड़ाइयां चलते रहे थे और ट्रूडो साहब ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था इटली का जो स्टैंड था इन इश्यूज के ऊपर और इन दोनों की काफी जो थी वो हुई थी क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था जी कि इसकी इनकी जो गवर्नमेंट है मिलोनी साहबा की ये लिमिट करेंगी रिकग्निशन ऑफ पेरेंटल राइट्स टू ओनली बायोलॉजिकल पेरेंट्स एंड फैमिलीज विद सेम सेक्स पेरेंट्स। तो उसके ऊपर फिर जो है ट्रूडो साहब हमारे तो आपको पता ही है हालांकि पंगा कम ही लेते हैं पर उन्होंने पंगा ले लिया है जी काफी इनके साथ जो है तू मैं हुई फिर जो है कोई ट्विटर पे कोई इधर कोई उधर। मिलोनी साहब ने कहा कि ट्रूडो साहब जो है उनको फेक न्यूज मिली है उनको बिल्कुल सही से न्यूज नहीं पता है और यार मासूम है साड़ा बंदा माफ करो
उन्होंने अपोलॉजी के लिए बुलाया
उन्होंने कहा तुम खुद आओ मैं तुम्हें खुद अपोलोजाइज करूंगा। बहरहाल जी वो अब जो है 2 मार्च को यहां पे आ रही हैं और ये ट्रोनो भी आएंगी और ये सारा जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ करेंगी। इसके अंदर इनका एजेंडा रहेगा कि यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे और दूसरा ये है कि अफ्रीकन जो पार्टनर्स हैं उनके साथ कोऑपरेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा दूसरे जो चैलेंजेस हैं उनका सामना जो है हमको कैसे करना है। पायन कोई चैलेंजेस नहीं, सानू मिलियन डॉलर दो बस चैलेंज थोड़े खत्म नहीं है लेकिन बस मासूम बहुत हैं ट्रूडो साहब जो है ना तो इसलिए इनसे कुछ काम जो है ना ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है जी तो ये आज लोगों को बड़ी हैरत हुई कि भाई जिसके लास्ट ईयर सारा वक्त लड़ाई चलती थी G7 पे और अब जो है बड़े प्यार मोहब्बत है। आज पीएम पॉलिवर साहब की जी भी बड़ी लड़ाइयां जो हैं हुई यानी कैसे आमने सामने नहीं वैसे पॉइंट क्लेयर के जो मेयर हैं टिम थॉमस उन्होंने आज बड़ी बातें सुनाई हैं इनको पीएर पॉलिवर साहब को क्योंकि पीएर पॉलिवर साहब जो हैं रेम स्टेशन जो के बन रहा है यहां पे पॉइंट क्लेयर में वहां पे थे और उसके शॉपिंग लॉट में सॉरी पार्किंग लॉट के अंदर खड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि जी ये कैसा इलाका है ये तो यहां पे 911 इमरजेंसी हो गई है इतने यहां पे घर चाहिए तो ये जो म्यूनिसपैलिटीज हैं अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो इस तरह मैं उन सबको सजाएं दूंगा अगर वो हाउसिंग के ऊपर काम नहीं करेंगे और उन म्यूनिसपैलिटीज को जो बहुत तेजी से हाउसिंग पे काम करेंगे उनको मैं बोनसेस दूंगा। अब जी जो मेयर हैं टिम थॉमस वो तो जो है उनकी हट गई
क्यूबेक ये अपना लूज कर रहे हैं इससे पहले हाँ। जो मॉन्ट्रियल के वो है मॉन्ट्रियल के जो क्या कहते हैं उसको
प्रीमियर
उसको भी उन्होंने हाँ। कर दिया था तो अब मेरा ख्याल है कि ये सब जगहों पे जाके ऐसा
लड़ाई झगड़े करेंगे तो वोट इनको जीरो मिलने हैं
जीरो
अंडे वोट मिलेंगे। अच्छा जी बारा तो जो हट गई उनकी मेयर साहब की यहाँ पे हट गई उन्होंने कहा जी कि
मॉन्ट्रियल के मेयर
ये जो है पॉइंट क्लेयर के मेयर
पॉइंट क्लेयर इससे पहले वो मॉन्ट्रियल के मेयर से भी लड़के आए
हाँ जी। अच्छा जी तो वो कहते हैं जी कि ये यहाँ पे फ्रॉम 2017 से 2022 में सबसे ज्यादा जो मॉन्ट्रियल का ईस्ट एंड है उसमें हाउसिंग मिली बनी है और ये तो जो पीयर पॉलिवर साहब हैं इनको कुछ पता शता नहीं है और ये ब्यूरोक्रेसी को भी उन्होंने कहा जी कि ब्यूरोक्रेसी रोक रही है इनका कंस्ट्रक्शन। उन्होंने कहा जी ये बिल आवाजा लोगों को खींच रहे हैं इनको कुछ इसके बारे में पता नहीं है। वो कहते हैं जी कि हमने 2055 इधर पॉइंट क्लेयर के अंदर घर बनाया कंपेयर टू 1635 इन द ईस्ट एंड ऑफ मॉन्ट्रियल। वो कहते हैं जी बाय 2023 हमने जो कॉन्डोज और अपार्टमेंट्स बनाए थे वो सबसे ज्यादा थे यहां पे जो मॉन्ट्रियल की बाकी की 14 म्यूनिसपैलिटीज हैं उनमें सबसे ज्यादा थी जिसमें के हमारा जो पॉइंट क्लियर है उससे 6 times ज्यादा पॉपुलेशन है। तो ये इन्होंने कैसे विदाउट एनी फैक्ट चेक के इन्होंने ये बातें कर दी हैं ते पाया ने फिर इनके लिए बैड न्यूज है जी लोग जो है उनको भड़का रहे हैं ये बहुत ज्यादा जो है वैसे भी लोगों हमारों का प्यार है जी जनती ट्रूडो के साथ ज्यादा ही प्यार है। ठीक है जी। अच्छा जनाब ऑन्टेरियो लेजिस्लेशन जो है अब जब वो वापस आएगी छुट्टियों के बाद इस हफ्ते में तो उसके पास बहुत सारे बड़े जो है एजेंडा होएगा जिसके के अंदर वो कहेंगे कि ये जो वेज रिस्ट्रिक्शन का जो लॉ है इसको रिपील आप करें और ये जो आपने ये कहा था कि जी हम इसको लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, ये इसको अब आप खत्म करने की कोशिश करें, इसको और ज्यादा एक्सपैंड ना करें, क्योंकि इसमें काफी प्रॉब्लम्स हैं, खास तौर पे जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं उनका मुद्दा जरूर आएगा, जिसमें कि इन्होंने कहा था जी कि हम जो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ये बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस फेस कर रही हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है गवर्नमेंट का। वो कहते हैं जी कि हमारे पास फंडिंग बहुत कम है। फिर आपने कहा था जी कि ट्यूशन फी भी कट कर दो 10%, फिर आपने फ्रीज लगा दिया था ट्यूशन फी इंक्रीज करने के ऊपर 2019 में। तो ये सारे आपके जो हैं टैक्टिक्स हैं इसकी वजह से, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर रोक लगा दी है, तो अब वो भी यूनिवर्सिटियों में कम आएंगे। तो वो कहते हैं जी कि एटलीस्ट ऑन्टेरियो के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर ये जो बाकी के जो कैप्स आपने लगाए हुए हैं इनको हटाएं, ताकि तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है अभी जब
बहुत ये सारे एक नहीं बल्कि कई मुद्दे हैं जिस पे बात करेंगे, और उस पे नंबर वन जो है वो पब्लिक सेक्टर की जो एम्प्लॉइज हैं
वेज वेज के ऊपर जो उनकी
रिस्ट्रिक्शन है उसको जो है रिपील करना है।
तो वही मैंने कहा कि पहला वेज का है, पहला वेज का है, फिर ये यूनिवर्सिटीज का है। उसके अलावा जी ये कहते हैं कि ये जो आपने गेट इट डन एक्ट, ये जो आपका जो फोर्ड साहब का 2022 का पोल कैंपेन स्टाइल का जो ये स्लोगन था, इसके ऊपर भी बातचीत हुई होगी, जिसके के अंदर इन्होंने कहा था जी कि हम जो है किसी भी जो हम एक लेजिस्लेशन बना देंगे कि कोई भी अगर फ्यूचर के अंदर ऑन्टेरियो की गवर्नमेंट आएगी तो वो जो है रेफरेंडम कराएगी अगर उसको कार्बन टैक्सिंग जो है वो करनी पड़ेगी। लेकिन जाहिर है कि ये इसके ऊपर बात करेंगे और हो सकता है ये अपने हिस्से का फिर से ऑन्टेरियो जो है कार्बन टैक्स ना लगाए, लेकिन फेडरल कार्बन टैक्स जो है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, वो इन प्लेस रहेगा।
और वो आज फेडरल गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि भाई आप कुछ भी कर लें
वो हटाएंगे नहीं,
हम उसको लेके आएंगे।
हाँ हाँ लेके आएंगे जी बिल्कुल। तो ये कहते हैं जी कि ये सम ऑफ द बिगेस्ट जो है चीजें हैं जिसके ऊपर काफी डिबेट होने वाली है और अपोजिशन का इसके ऊपर क्या रिएक्शन रहेगा। तो इसके अलावा जो और भी एक बहुत बड़ा जो और भी बात होगी, वो जो मैडम जो बोनी क्रॉम्बी साहबा जो बड़ा खुश थी जिसमें कि इन्होंने कहा था कि हम डिसॉल्व कर देंगे पील रीजन को, वो भी मुद्दा जो है वो अंडर डिस्कशन आएगा, क्योंकि अब तो वो हट गई हैं यहां से और अब वो बन गई हैं लिबरल पार्टी की हेड। अब वो
सीट्स नहीं है उनके पास।
हाँ हाँ
तो वो पावर नहीं है ना इनके पास, खुद के पास कोई सीट है और ना ही इनकी पार्टी के पास कोई सीट
जी। तो वो कह रहे हैं कि ये भी जो डिसोल्यूशन का जो ये है, ये क्योंकि पैट्रिक ब्राउन साहब इसके बड़े खिलाफ थे कि ये पील को डिसोल्यूशन को नहीं लेके जाना चाहिए।
आई कैन टेल यू राइट।
हाँ तो वो कहते हैं जी कि ये भी मुद्दा आएगा, तो अगर ये जोर इस पे नहीं लगाया गया तो ये भी मुद्दा जो है खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर नहीं होगा। अच्छा जनाब, एक बड़ी मजे की खबर है, बंदे तो बंदे, हमने सुना था कि हम एक दूसरे को कहते हैं कि भाई तुम बात करो काट क्यों रहे हो, लेकिन कुत्ते वाकई काट रहे हैं लोगों को जो है टोरंटो के अंदर। अच्छा जनाब, टोरंटो की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमेटी है वो कह रही है जी हम एक लाने वाले हैं मोशन जिसके के अंदर हम पूरे की पूरी लिस्ट छापेंगे जिसमें के डेंजरस कुत्ते जो हैं जो टोरंटो में बहुत ज्यादा हो गए हैं उसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि इनके अटैक्स जो हैं लोगों पे बढ़ गए हैं। वो कहते हैं जी कि एक स्टैंडर्डाइज हम साइनेज लगाएंगे उन तमाम प्रॉपर्टीज पे जिनके के ओनर्स जो हैं उनके पास ये कुत्ते हैं, और इसके अलावा हम जो है एक पूरी पब्लिक एजुकेशन कैंपेन रोल आउट करेंगे और हम लोगों को एजुकेट करेंगे कि अगर कुत्ता आपके ऊपर अटैक करता है तो आपको क्या करने की जरूरत है। टोरंटो डैनफोर्ड के वार्ड 14 की जो काउंसलर हैं पॉला फ्लेचर, उन्होंने भी कहा है कि ये जो डेंजरस डॉग्स हैं ये कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा खतरा है, इनके ऊपर एक जो है सेफ्टी इशूज क्या होने चाहिए उसको लाने की जरूरत है, हमको बहुत प्रोएक्टिवली मॉनिटर और एनफोर्स करना चाहिए इस चीज के लिए कि रेजिडेंट्स को ये बताया जाए कि भाई आप जो हैं अपने इन कुत्तों को कैसे सेव रखें, दूसरे जो रेजिडेंट्स हैं जिनके पास कुत्ते नहीं है वो कैसे सेव रहे, और ये बाकी के जो कुत्ते हैं जो कि काटते नहीं है उनको भी कैसे सेव रखा जा सकता है, क्योंकि काटने वाला कुत्ता जो है वो सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि जो है दूसरे कुत्तों को भी काट रहा है। तो इसके ऊपर जनाब जो है बड़ी आज जो है बातचीत हुई है। वाशिंगटन पोस्ट की जनाब ये रिपोर्ट है और इसके मुताबिक जो है ट्रंप साहब आपको बताइए कि 77 इयर्स हैं के हैं, लेकिन फिर भी ये सेकंड टर्म जो है वो एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस सीख कर रहे हैं, और जो जज हैं उन्होंने इनको न्यूयॉर्क के उन्होंने इनको रोक दिया है कोई भी अपना बिजनेस करने के लिए, और उन्होंने बल्कि इनको कहा है कि $355 मिलियन के आपको पेनल्टीज देने पड़ेंगे क्योंकि आपने न्यूयॉर्क सिटी में बिजनेस करने के लिए झूठ झूठ बोला अबाउट योर वेल्थ और बाकी के बहुत सारे आपने फाइनेंशियल ऑफेंसेस किए हैं। फिलाडेल्फिया के अंदर ये एक इवेंट कर रहे थे और जबकि ये इनके ऊपर जो है ये आ चुकी थी ये जो सजा है, इन्होंने उस इवेंट का नाम जो रखा हुआ था ग्रेटेस्ट स्नीकर शो ऑन अर्थ, उसमें इन्होंने अपना पहला ऑफिशियल ट्रंप ब्रांडेड फुटवेयर जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। बड़ा शाइनी गोल्ड कलर का ये शू है और इसकी प्राइस जो है काफी एक्सपेंसिव है, ये $399 का है। इसके ऊपर जो बैक के ऊपर है अमेरिकन फ्लैग बना हुआ है और एक टी बैज है इन फ्रंट, और ये कहते हैं जी कि मैं इसको कहूंगा स्नीकर कॉन्फ्रेंस। स्नीकर कॉन्फ्रेंस पे ये बात कर रहे थे, वो कहने लगे जी कि ये बहुत पॉपुलर रहेगा क्योंकि ये जो स्ट्रीट वेयर कलेक्टर्स हैं उन वो बड़े इसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये जो मैंने अब जूता लेकर आया हूं 12 से 13 साल से इसके ऊपर मैं काम कर रहा था एंड आई होप कि ये इट्स गोइंग टू बी अ बिग सक्सेस। वो कहते हैं जी कि ये उन लोगों के लिए है जिनको मैं कहता हूं नेवर सरेंडर हाई टॉप्स, यो जो कि वो कहते हैं जी कि ये जो इनकी जो वेबसाइट भी इसको एक्सप्लेन कर रही है गेट ट्रंप स्नीकर्स की, वो भी कह रही है कि ये जो जूते हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो कभी क्विट नहीं करते हैं। तो इनकी वेबसाइट जो है ना सिर्फ जूते बेच रही है बल्कि एडवर्टाइज कर रही है विक्ट्री 47 क्लोन जो है वो, और ये जो बॉटल है परफ्यूम की ये भी $99 की है। तो उसके साथ साथ अब ये जूते भी वहां पे बेचे जा रहे हैं और वो कहते हैं जी कि ये बड़े जबरदस्त जूते हैं और ये वो पहनेगा जो कि बहुत बड़ा पेट्रियट है। तो ये जनाब सारी आज जो है चीजें सामने आई हैं, जबकि इनके ऊपर जो है वो जज ने, न्यूयॉर्क के जज ने इनको ऑर्डर किया है कि आप पेनल्टीज जो हैं तकरीबन $355 मिलियन की आप पे करें। अल जजीरा की ये खबर है जी और इसके मुताबिक जो कतारी प्राइम मिनिस्टर हैं आपको पता ही है कि वो कॉन्स्टेंटली यूएस गवर्नमेंट के साथ मिलकर ट्रूस लाने की कोशिश कर रहे हैं गाजा और जो इसके अंदर इसराइल के बीच में वॉर चल रही है यानी कि हमास और इसराइल में। तो उसके अंदर कतारी प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी जो हैं वो आज बहुत सारे अपने जो यूरोपियन काउंटर पार्ट्स हैं इंक्लूडिंग यूएस उनके साथ मिले थे न्यूयॉर्क के सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो चल रही है उसमें। वो कह रहे हैं जी कि हम कॉन्स्टेंटली मीडिएशन की कोशिश दोनों तरफ से कर रहे हैं लेकिन हमें लग नहीं रहा है कि उसका सोल्यूशन कुछ जल्दी आएगा। इसके अंदर इनके साथ ना सिर्फ यूएस बल्कि इजिप्शियन ऑफिशियल्स जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं जो इनके साथ कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जी मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं अभी तक तो हमें कोई रिजल्ट आए नहीं है लेकिन जल्दी आ सकते हैं क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली इसके लिए पुश कर रहे हैं। हमास जो है वो कहता है जी कि इसराइल जो है वो कंप्लीटली गाजा से विड्रॉ करे और ह्यूमैनिटेरियन एड को अंदर आने दे। इसराइल ने कहा जी कि ये आपके डिल्यूजनल डिमांड्स हैं, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा। इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये डील जो है ये बिल्कुल जो है हम नहीं मानने को तैयार हैं। इसके बीच में जो स्पेन की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कहा जी कि चूंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो तो अभी कुछ भी नहीं कर रही है लेकिन हम जो हैं यूनिलैटरली अप्लाई कर सकते हैं सैंक्शंस इसराइल के जो सेटलर्स हैं इन वेस्ट बैंक उनके ऊपर अगर ईयू नहीं भी एग्री कर रही है हमारे साथ। इसके साथ साथ आयरलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं माइकल मॉर्टन उन्होंने भी कहा है जी कि मैं भी कॉन्स्टेंटली पुश कर रहा हूं ईयू को कि सैंक्शंस लगाए जाएं ये जो वायलेंट सेटलर्स हैं जो वेस्ट बैंक में जा रहे हैं जिन्होंने कुछ शॉक किया है सारी ह्यूमैनिटी को और इतना इनह्यूमन इनका ट्रीटमेंट है गाजा के अंदर। इसके साथ साथ ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा उन्होंने भी कहा है कि जो कुछ इस वक्त गाजा के अंदर हो रहा है वो मैंने तो हिस्ट्री में नहीं देखा, हां सिर्फ एक दफा देखा गया था जब हिटलर ने मारा था ज्यूज को अंडर हॉलोकॉस्ट। इसके ऊपर जाहिर है कि अब इसराइल जो है वो बड़ा हो गया है भड़क गया है। उसने कहा जी कि ये ब्राजीलियन प्रेसिडेंट के जो कमेंट्स हैं ये ट्रिवलाइज कर रहे हैं जो हमारी सफरिंग्स थी हॉलोकॉस्ट के अंदर एंड ही हैज एक्चुअली क्रॉस द रेड लाइन। तो पाया ना आपने तो कब से रेड लाइन क्रॉस की हुई है, 29,000 से ज्यादा लोग मुसलमान मार दिए हैं तो अपने बारे में भी बात करो। बारा जी ये जनाब ये सारा कुछ आज दुनिया में काफी हंगामा रहा। रॉयटर्स की न्यूज आई है जी और इसके मुताबिक तकरीबन 90,000 जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं वो आज मेक्सिको की सिटीज के अंदर नजर आए क्योंकि वो कह रहे हैं जी कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है और इनके मुल्क में जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं June 2 को। तो अहेड ऑफ दैट ये जो है डेमोन्स्ट्रेटर्स पिंक पहना हुआ था, उन्होंने आज पिंक मार्च किया है और ये पिंक कपड़े पहन के ये कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि जो पिंक कलर है ये डेमोक्रेसी को ये शो करता है। मेक्सिको की जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो चाहती हैं जी कि यहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं और जो है इसके अंदर जो प्रेसिडेंशियल फ्रंट रनर हैं क्लॉडिया शिनबॉम वो जो हैं वो भी यहाँ पे जो इनकी गवर्निंग पार्टी है मोरिना उनसे उससे इन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया क्योंकि ये भी प्रेसिडेंशियल रेस में अब शामिल हो गई हैं। लोग जो आज प्रोटेस्ट कर रहे थे वो कह रहे थे जी कि वैसे तो आपको पता है मैक्सिकन ये जो लीडर हैं एंड्रेस आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडन जो कि 70 इयर्स उनकी एज है ओब्राडोर लेकिन वो कहते हैं जी कि ये हैं तो बड़े पॉपुलर लेकिन इन्होंने जो कुछ भी जर्नलिस्टों के ऊपर अटैक करते हैं जुडिशरी पे अटैक करते हैं और फिर जो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पार्टी है वो यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में ये है इनकी जो पार्टी है ये काफी ज्यादा जो है जो कंजर्वेटिव्स जो हैं उनके ऊपर एतराज करते हैं कि ये हमारे मुल्क के खिलाफ जो है वो कर रहे हैं कॉन्स्परेसी कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि वैसे तो लोग ओब्राडोर से सबसे बड़े खुश हैं क्योंकि इन्होंने जितनी भी अलीट क्लासेस थी मेक्सिको की उनको कोने के साथ लगा के और इस मुल्क के अंदर जो है बिल्कुल जो आम आदमी थी उसकी पॉलिटिक्स को लाए हैं लेकिन ये जो इनके काम है वो ठीक नहीं है तो इसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है हर्ट होती है। और उसी सिलसिले में आज ये डेमोन्स्ट्रेशन भी थे कि भाई अगर आपको इस मुल्क में डेमोक्रेसी चलानी है तो जून 2 को जो जनरल इलेक्शन हैं उसको बिल्कुल फ्री एंड फेयर करने की जरूरत है। ब्रिटिश लेबर पार्टी के जो लीडर हैं जी केयर स्टॉर्मर उन्होंने बड़ा जनाब यू टर्न लिया है और ये जो है ग्लासगो के अंदर अपनी स्कॉटिश लेबर पार्टी की जो कन्वेंशन थी उससे बात कर रहे थे और उसमें इन्होंने कहा जी कि मैं इमीडिएटली इसराइल को कहता हूं कि एक लास्टिंग सीज फायर लेकर आए। इससे पहले जो थे वो इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करते थे लेकिन लग यह रहा है कि इनके ऊपर भी जो है बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है जो है प्रेशर के आप बोलें कि इसराइल जो है वो सीज फायर करे। ये वापस आ रहे थे म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल से और वहां पे जो है फिर इन्होंने थोड़ी देर के लिए बातचीत की और उन्होंने कहा जी कि ये जो इनोसेंट पैलेस्टीनियंस को मारा जा रहा है इनकी जो किलिंग्स है उसको बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये जितने हॉस्टेजेस दोनों साइड ने पकड़े हुए हैं उन हॉस्टेजेस को छोड़ें और ह्यूमैनिटेरियन एड को अंदर जाने दें और वॉर को बिल्कुल बंद करें। उन्होंने कहा जी लेकिन ये सीज फायर और वॉर को बंद करने के लिए वन साइडेड जो एफर्ट्स हैं वो ठीक नहीं रहेंगी दोनों साइड्स को बैठ के उसको खत्म करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने वार्न किया इसराइल को बहुत ज्यादा आज उन्होंने कहा कि रफा के अंदर जो तुम अपना ऑफेंसिव शुरू करने लगे हो वहां पे 1 मिलियन के करीब पैलेस्टीनियंस बड़ी मुश्किल हालात में ऑलरेडी रह रहे हैं तो और भी ज्यादा जो है वो इनोसेंट जो कॉमनर्स हैं उनकी यानी कि जो सिविलियंस हैं उनकी ऊपर जाएगी जो डेथ टोल है तो बिल्कुल तुम ऐसा ना करो। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पैलेस्टीनियंस जो हैं जी वो आज थे इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे और वो कह रहे हैं जी कि इसराइल को कहा जाए कि कंप्लीटली ये जो ऑक्यूपेशन है ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटोरीज और ये जो सिस्टम ऑफ अपार्थाइड इन्होंने चलाया हुआ है इसको बिल्कुल एंड करें। पैलेस्टीनियन फॉरेन मिनिस्टर रियाद अल मलकी और उनके जो यूएन एनवॉय थे रियाद मंसूर ये लोग आज वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में थे। इनकी ये जो पिटीशन है दिस इज अदर देन व्हाट द हेग में लेकर आए थे साउथ अफ्रीका जो लेकर आया था जिसने के कहा था कि गाजा के अंदर वॉर का बिल्कुल बंद करें क्योंकि जो इसराइल है वो जीनोसाइड कर रहा है। तो ये दो डिफरेंट जो है अब लीगल जो स्टैंडिंग्स हैं ये पिटीशन जो हैं ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हैं। इनकी जो आज ये जो पैलेस्टीनियंस लेकर आए हैं वो कहते हैं जी कि सदियों से इन्होंने ऑक्यूपेशन किया हुआ है पैलेस्टाइन के ऊपर ये कोई भी इसराइल स्टेट नहीं थी ये पैलेस्टीनियन स्टेट थी सारी की सारी इसके ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। दिसंबर 2022 में भी यूएनजीए की एक रेजोल्यूशन आई थी जिसमें के कहा गया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना ओपिनियन दे कि इसराइल ने जो 57 ईयर से ऑक्यूपाई की हुई है पैलेस्टीनियन स्टेट इसका क्या स्टेटस होना चाहिए। आज जो है इसके अंदर उस वक्त जब इसके ऊपर वो हुए थे जब वोटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशंस में तो 87 ने फेवर किया था और 25 कंट्रीज जिसके के अंदर यूएस भी शामिल था उन्होंने नो का वोट डाला था। यूनाइटेड नेशंस के ऊपर आज बात करते हुए इन्होंने कहा जी कि इसराइल की जो प्रेजेंस है यहां पे पैलेस्टीनियन स्टेट्स में ये इलीगल है ये ऑक्यूपेशन है और ये अनकंडीशनली इसको खत्म होना चाहिए और अगर इनको अकाउंटेबल ना ठहराया गया तो कोई भी जस्टिस नहीं होगा और जस्टिस के बगैर जो है पीस नहीं आ सकता। इसराइल जो है वो अपार्थाइड एक सिस्टम चला रहा है और सिस्टमैटिक ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहा है जिसको के रोकने की जरूरत है। तो ये जनाब अब एक और जो है आ गई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पिटीशन इनकी तरफ से पैलेस्टीन की तरफ से پیلسٹائن وار پہ, لیکن ظاہر ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی جو تھی وہ ساؤتھ افریقہ لے کر آئی تھی. اچھا جی, دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی راجہ بادشاہ جی. آل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں آپ کو رائٹ کوریج دیتا ہوں, تو آپ ان کے پاس ضرور جائیں اگر آپ کو ڈھیر سارے پیسے بچانے ہیں. راجہ جی کا نمبر ہے 6472903773. اور جناب اس کے علاوہ اگر آپ کو جو ہے اپنا جاب فیئر اٹینڈ کرنا ہے برامپٹن کے اندر, تو آپ فیبرری 22 کو جو ہے وہاں پہ برامپٹن کے اندر لگا رہے ہیں یہ لوگ ایک جاب فیئر جم آرچ ڈیکن ریکریشن سینٹر کے اندر. یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو ریکریشن اینڈ پارکس مینٹیننس اینڈ فارسٹری والے ہیں ان کے پاس بہت ساری جابز ہیں 3 سے لے کے شام 7 تک. اگین جم آرچ ڈیکن ریکریشن سینٹر میں یہ لگ رہا ہے. اگر آپ کو زیادہ انفارمیشن چاہیے تو آپ brampton.ca/rec-jobs کے اوپر جا کے ساری انفارمیشن لیں. اچھا جناب, یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان کے اندر چل رہی ہے اس کے رہتے ہوئے فچ ریٹنگز جو ہیں انہوں نے آج کہا ہے جی کہ پاکستان کے اندر اگر یہ سب کچھ چلتا رہا تو ان کی جو نیکسٹ فائنینسنگ کی جو آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہوئے گی یا جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ان کا جو اب ایکسپائر ہو رہا ہے مارچ 2024 میں, اس کے بعد ان کو اپنا بات چیت کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ پاکستان کا جو کریڈٹ پروفائل ہے وہ بہت زیادہ نیچے آ گیا, اور اگر یہ سب کچھ چلتا رہا اور انہوں نے یہ کھینچا اور تو پھر یہ نیگوسیشنز بھی نہیں ہو سکیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ لکوڈیٹی آ جائے گی ایکسٹرنل جو ان کے سیٹ آف فنڈز ہیں اس کے اوپر, اور بہت زیادہ پروبیبلٹی بڑھ جائے گی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جائے گا. تو ان کو جو ہے یہ لڑائی جھگڑا اور انسرٹینٹی چھوڑ کے ایک سٹیبل گورنمنٹ جو ہے لانے کی ضرورت ہے اگر ان کو آئی ایم ایف کے ساتھ بات کرنا ہے. آج بی بی زرداری صاحب جو ہیں ان سے پھر سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ بھائی صاحب آپ نے بنانی ہے کوالیشن گورنمنٹ پی ایم ایل این کے ساتھ. انہوں نے کہا جی کہ نہیں, ہم سپورٹ تو کریں گے لیکن ہم ان کے ساتھ کوالیشن گورنمنٹ نہیں بنائیں گے. وہ آج ایڈریس کر رہے تھے یوم تشکر ریلی ان ٹٹا, جہاں پہ کہ یہ سندھ کے اندر جو ان کو وکٹری ملی ہے, سو کالڈ پتہ نہیں اپنی کہتے ہیں وکٹری ملی ہے, برحال جی اس کو یہ سیلیبریٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی کہ جو بندہ پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے وہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور ہمارا اس کے ساتھ پرابلم ہے, اور لوگوں کے پرابلمز جو ہیں وہ سالو اس طرح سے نہیں کیے جا سکتے, اور اگر میں پرائم منسٹر بنا لیکن میں اسی وقت بنوں گا جب لوگ مجھے چوز کر کے لائیں گے, تو سندھ میں جو فلڈ وکٹمز ہیں یا کہ جو بلوچستان میں ہیں ان کے سب کے میں مسئلے حل کروں گا. انہوں نے کہا جی کہ مجھے انہوں نے آفر کی تھی ہم لوگوں کو, پی 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 کو یعنی کہ پی ایم ایل این نے, کہ پہلے 3 جو ہے وہ پی ایم ایل این حکومت کرے گا اور پھر نیکسٹ 2 جو ہے وہ کرے گا پی 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 کرے گا, تو ہم نے اس آفر کو ریجیکٹ کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بڑا ہی ڈینجرس قسم کا سیٹ اپ ہے جو کہ یہ کیا جا رہا ہے. ویسے تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے بالکل یہ پروٹیسٹ اور سٹ انس پسند نہیں ہے, لیکن جو کچھ بڑی جو ریگنگ کی گئی ہے اس سلسلے میں میں اپنے جو ہے پارٹی سپورٹرز کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ سٹریٹس کے اوپر آئیں اور ایک پروٹیسٹ شروع کریں, بالکل اسی طرح جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں یا میری والدہ جب زندہ تھی بےنظیر ان کے زمانے میں ہم نے کیے تھے. بالکل آن دیٹ نوٹ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا نعرہ تھا پی 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 کا, پاکستان کھپے, کیونکہ ہم جو ہے یہاں پہ پولیٹیکل انسرٹینٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور سب کو اکٹھا لے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو میرے جیالے ہیں بہت سارے ان کو جو ہے کراچی میرپور خاص اور مورو کے علاقوں میں مارا گیا ہے, اور اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی پی 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 کے ورکرز کے اوپر بہت زیادہ اٹیک کیا گیا اور ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ سٹیل کیا گیا ہے. سندھ میں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم گورنمنٹ بنائیں گے اکارڈنگ ٹو دا فارم 45 جس کے مطابق ہم نے سب سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں. سینٹر میں ہم سپورٹ پی ایم ایل این کو کریں گے لیکن ان سے کوئی منسٹریز نہیں لیں گے, اور ہمارا جو پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہوئے گا وہ میرے والد صاحب ہوئیں گے, آصف علی زرداری صاحب. تو اٹ از ٹائم ٹو سیو پاکستان, ٹائم ٹو سیو پاکستان, تو پھر نکل جاؤ پھر پالیٹکس تو باہر بیٹھو, باہر بیٹھ کے کچھ کرو جس طرح عبدالستاریدی نے کیا تھا یا انڈس ہاسپٹل والے کر رہے ہیں یا شوکت خانم ہاسپٹل کر رہے ہیں, آپ بھی ویسے ہی کرو پھر کچھ کام. جیب دے وچوں ایک تیلا نہیں تسی لگانا تے گلاں وڈیاں وڈیاں کرنی ہے. میں پرائم منسٹر بنوں گا, میرا باپ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنے گا, تو پین پھر یہ کیا پاکستان سے آپ کی محبت ہے. اچھا جناب, پی ٹی آئی کے جو چیف منسٹر نامینیٹڈ ہیں کے پی کے اندر علی امین گنڈاپور, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کنگ کے لائلز ہوتے ہیں نا یہ ذرا زیادہ ہی پھرتیاں دکھاتے ہیں, کنگ سے زیادہ جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے نا ان کو تکلیف ہوتی ہے, تو یہ جو زیادہ پھرتیاں دکھا رہے ہیں جس وقت میں چیف منسٹر بنوں گا تو میں بڑی ان کو پنشمنٹ دوں گا اگر انہوں نے اپنے طریقے جو ہیں یا اپنے رنگ ڈھنگ جو ہیں ٹھیک نہیں کیے. آج یہ پشاور کے اندر میڈیا سے بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی کہ سارے ملک کے اندر پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, ہمارے ورکرز اور سپورٹرز کو ڈیٹین کیا جا رہا ہے, ہمارے اوپر فیک ایف آئی آرز لگائی جا رہی ہیں, ہم نے جو ہے बहुत इसके ऊपर सब्र का मुजाहरा किया है, लेकिन जो है अब इसके ऊपर जो है हम आवाज उठाएंगे कि ये जो मैसिव रिगिंग हुई है, आपको पता ही है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो PK-113 और NA-44 DI खान दोनों सीटों से ये जीते थे, और इन्होंने कहा जी के, और फिर उसके बाद जो है इमरान खान साहब ने इनको चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट किया था केपी के लिए। इन्होंने कहा जी कि हमने अपनी जो केपी की मिनिस्टर्स की लिस्ट है वो भी शॉर्ट लिस्ट कर ली है, लेकिन वो सारी की सारी लिस्ट जाएगी इमरान खान साहब के पास, उनसे डिसीजन लिया जाएगा कौन बैठेगा कैबिनेट में कोई या कौन नहीं बैठेगा, उसके बाद जो है फिर हम सारे नाम जो है वो करेंगे। उन्होंने कहा जी कि हमें बहुत ज्यादा तकलीफें दी गई, इसके बावजूद जो है हमने इलेक्शन लड़े और हमको इस टफ टाइम में पता चल गया कि कौन खान के साथ खड़ा है और कौन नहीं। जो इस मुश्किल वक्त में खान के साथ खड़ा है वही पार्टी का हिस्सा रहेगा, बाकी के लोग नहीं रहेंगे। PMLN ने जनाब डिमांड की है इंटरम जो गवर्नमेंट है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, इससे उन्होंने कहा जी कि PTI फिर से मई 9 टू जो है करने का सोच रही है। आज ये एक प्रेस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मलिक अहमद खान और अता तारड़ थे इसमें और आजमा बुखारी थी, और उन्होंने कहा जी कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में मई 9 से ज्यादा हॉरिफिक जो है इंसिडेंट आज तक नहीं हुआ। भाईजान 1971 आप भूल गए हैं, लियाकत अली की मौत आप भूल गए हैं, बेनजीर की मौत भूल गए हैं, जो लाहौर में हुआ वो भूल गए हैं, जो बच्चे बेचारे मार दिए पिशावर के अंदर वो टेररिस्ट अटैक में वो आप भूल गए हैं, मतलब वो हॉरिफिक नहीं थे, ये सबसे हॉरिफिक था। तो भाईजान अपनी हिस्ट्री भी और अपनी तालीम दोनों सही करो आप, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान का सबसे हॉरिफिक ये जो था ये मई 9 का जो था वो था, और हमें तो याद नहीं है कि इससे ज्यादा कोई खतरनाक वाकया पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी हुआ है। और PTI जो है सोशल मीडिया यूज करके सारा प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रही है। तारड़ साहब ने कहा जी कि PTI जो है बहुत ही ज्यादा मिलिशियस कैंपेन चला रही है लोगों के बच्चों के खिलाफ, रिटर्निंग ऑफिसर्स के खिलाफ, और इनका इंतहाई एनार्किक जो है वो बिहेवियर है, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को थ्रेटन कर रहे हैं। वाह जी वाह, भैन थानू भी खलो के सलाम करना चाहिए, क्या बात है। और उन्होंने कहा जी कि केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर हैं और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको इस तरफ देखना चाहिए और PTI को सजा देनी चाहिए। वाह जी वाह, क्या बात है। इसके अलावा ये जो फॉर्मर रावलपिंडी के कमिश्नर थे, इनके बारे में जो एविडेंसेस ये जो सामने लेकर आए हैं, उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और जो है ये PTI जो है ये पाकिस्तान में जलती पे जो है वो तेल डालने का काम कर रही हैं। मई 9 को एम्बुलेंसेज और बैंक्स जो है उनको बर्न किया गया, ये पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक कॉन्स्परेंसी हैच की गई, और सिचुएशन दिन ब दिन खराब की जा रही है। इसके अलावा मलिक अहमद साहब ने कहा जी कि ये पाकिस्तान के खिलाफ जो सारी कॉन्स्परेंसी है ये बाहर जो है वो हैच की जा रही है। पायन अपना लंडन प्लान भूल गया, तुहानू तुहाडे कोल भी आंदे सन ना लंडन सारी लैण वास्ते। तो बहरहाल जी ये इन्होंने आज नॉनसेंसिकल बातें की और जाहिर है कि अपना मजाक इन्होंने फिर से उड़वाया। शेर अफजल खान मरवत जो हैं PTI के, उन्होंने आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कहा है कि मास्क मैन कुछ आए हैं मेरे घर में लास्ट नाइट 2 बजे के करीब इस्लामाबाद में, और उन्होंने मेरे घर के ऊपर जो है रेड की है। ये आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो मिसिंग बलोच स्टूडेंट्स का केस है उसको ये सुन रहे थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जो है मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने कहा जी कि अगर ये जो अफजल खान मरवत है ये जो इस्लामाबाद में रहता है, लकी मरवत में भी नहीं रहता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो है एडवोकेट है, तो अगर इस जैसे इन्फ्लुएंशियल आदमी के घर में इस तरह के रेड्स हो सकते हैं तो आप खुद सोचें कि बलूचिस्तान के अंदर जो हम जो लोगों के साथ कर रहे हैं या जो आम आदमी है उसके साथ क्या किया जा रहा है। इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो कहते हैं जी उसने ना सिर्फ रेड की बल्कि मेरे घर के दरवाजे तोड़े, मेरी फैमिली को जो है डराया धमकाया, मेरे स्टाफ को डराया धमकाया, मेरा लैपटॉप ये लेके चले गए, मैं घर से जो है गया हुआ था और मैं बाहर ही रहा, मैं एक सेफ जगह के ऊपर रहा, और ये जो कुछ भी इलीगल चीजें हैं उसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा और मैं चैलेंज करूंगा IGP और SSP इस्लामाबाद जो हैं उनको कोर्ट के अंदर। ये जो आपके बुजदिली के टैक्टिक्स हैं ये मुझे स्केयर नहीं कर सकते, और हम जो हैं क्योंकि मेरा मकसद बड़ा है, पाकिस्तान के अंदर ट्रू डेमोक्रेसी के लिए हम काम कर रहे हैं और हम उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड रखेंगे। अलबत्ता इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने अपने आज जो एक्स जो उनका अकाउंट है उसके ऊपर ये सारे के सारे इनके एलिगेशन को डिनाई किया। उन्होंने कहा जी कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, सही नहीं बोल रहे हैं। ये विक्ट्री नोटिफिकेशन जो दिए गए थे जी, 3 PMLN के जो नेशनल असेंबली के कैंडिडेट्स थे उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज सस्पेंड कर दिया है। इनका जो टू मेंबर बेंच था कंप्राइजिंग जस्टिस मियां गुल अहमद औरंगजेब एंड जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, और उन्होंने कहा जी कि ये जो पीएमएलएन के एनए कैंडिडेट्स थे तारिक अफसल चौधरी, अंजुम अकील, राजा खुर्रम, इन सब का जो है इनके अभी रिजल्ट्स जो है सस्पेंड किए जाएं। चौधरी साहब ने 102 जो है थाउजेंड से ज्यादा वोट्स अकॉर्डिंग टू अनऑफिशियल रिजल्ट्स लिए थे एनए 47 में, और इसको चैलेंज किया था इनके राइवल कैंडिडेट ने। अकील साहब ने जो है एनए 46 में 81,958 वोट्स लिए थे, इनको चैलेंज किया था अमीर मोहम्मद आमिर मुगल ने पीटीआई के थे, और राजा खुर्रम का जो एनए 48 था की जो सीट थी उसको चैलेंज किया था पीटीआई बैक कैंडिडेट अली बुखारी ने। तो उन्होंने कहा जी कि ये सारे का सारा जो है ये उन्होंने खेल रचाया है, तो इसके ऊपर जो है फिर से अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 जो है वो काउंटिंग कराई जाए। सेनेट के अंदर जनाब आज एक आई थी, प्रपोजल आई थी जिसमें के कहा गया था कि जो बंदा रेप करता है उसको पब्लिक एग्जीक्यूशन होनी चाहिए है ताकि लोगों को जो है सबक मिल सके। इसके ऊपर जो है आज काफी बहस और मुबाहसा जो है वो यहां पे हुआ। ये जो बिल था ये फेल हो गया आज 24-14 से। बिल प्रेजेंट किया था जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने, और उसको सपोर्ट किया था सेनेटर्स मेहर ताज रोगनी, कामरान मुर्तजा, मौलाना फैज मोहम्मद, हाफिज अब्दुल करीम, कमाल अली आगा और अब्दुल कदीर और बहुत सारों ने। उन्होंने कहा जी कि जो आदमी रेप करता है उसको जब तक आप पब्लिक हैंगिंग्स नहीं देंगे तो लोगों के दिलों में खौफ जो है वो नहीं बैठेगा। लेकिन पीपीपी ने कहा कि नहीं, आपको प्रॉपर प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए ताकि इस तरह के सेक्सुअल क्राइम्स जो हैं वो ना आ सकें, क्योंकि वो जो आदमी है जो रेपिस्ट है उसके जो बेसिक राइट्स हैं वो इस तरह से हम हो सकता है कि उसको पामाल करें। जेआईके मुश्ताक ने कहा जी कि आपको एक रेपिस्ट के ह्यूमन राइट्स का बड़ा पता है, और आपको जिसको उसने रेप किया है जैसे कि वो छोटी सी बच्ची जैनब थी और या के एक और जो मोटरवे रेप केस था उसमें, उन औरतों के ट्रॉमे के ऊपर आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। उनकी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट नहीं है, रेपिस्ट की रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट है। तो इनको पब्लिक हैंगिंग दे ताकि इनको पब्लिक शेम मिले और सोसाइटी के अंदर एक जवाब भी जाए। इसके ऊपर सबसे ज्यादा एतराज इन पे किया पीपीपी की शरी रहमान साहिबा ने। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल नहीं है, दुनिया सारी के अंदर जहां जहां ये होता है उसके कोई रिजल्ट्स नहीं आए हैं। सबसे जो हमारी बड़ी जो एग्जांपल है वो जियाउल हक का जमाना है, उस जमाने में भी ये लाई गई थी पब्लिक एग्जीक्यूशन, लेकिन उससे क्राइम जो है वो कम नहीं हुआ था जैसे कि बाकी दुनियाओं के अंदर जो है सेक्सुअल क्राइम्स कम नहीं हुए हैं। ठीक है भाई। अच्छा जी, पीटीआई के जो बैरिस्टर हैं जी गौहर अली खान, उन्होंने कहा जी कि हमारी जो पार्टी है उसके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो अब ज्वाइन करेंगे सेंटर में और पंजाब में और केपी के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ। आज जितने भी इनके बड़े बड़े जो लीडर्स थे वो वहां पे मौजूद थे, खासतौर पर जो बैरिस्टर गौहर और उनके साथ रऊफ हसन साहब भी थे, उमर अयूब खान थे, और ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं साहिबजादा हामिद और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सेक्रेटरी जनरल अलामा राजा नासिर अब्बास, ये सब लोग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा जी कि इनके सबके पास जो हैं अपने एफिडेविट्स हैं और इन्होंने रजामंदी शो की है कि ये जो है इनके साथ हाथ जोड़ने को तैयार हैं और यानी कि हाथ मिलाने को तैयार हैं, और ये सारी की सारी अब जो डिटेल्स हैं हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी भेजेंगे। वो कहते हैं जी इसके अलावा 70 रिजर्व सीट्स हैं नेशनल असेंबली के अंदर और 277 रिजर्व सीट्स हैं इन एंटायर कंट्री। तो हम कहते हैं कि ये सारे के सारे जो हैं हमारे साथ हाथ जोड़ें ताकि हम एक पोलिटिकल फोर्स बना सकें और प्रोटेक्ट कर सकें रिजर्व सीट्स को भी। उन्होंने कहा जी कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइंट हैंड्स इनके साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जाहिर है कि आपको पता ही है कि इनकी तो कोई पार्टी का कोई ना सिंबल था ना पार्टी थी, इन्होंने एज इंडिपेंडेंट किया था, तो नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबलियों में सीट बनाने के लिए किसी पार्टी का होना जो है वो बहुत जरूरी है, तो इसीलिए ये कर रहे हैं। उमर अयूब ने इस मौके के ऊपर कहा जी कि हम पूरी कंट्री के अंदर यूनिटी चाहते हैं और इसीलिए हम एसआईसी के साथ सेंटर में और प्रोविंसेस में कर रहे हैं ताकि एक जो है स्टेबल गवर्नमेंट को चलाया जा सके। और जनाब खबरें तो आती हैं हमें बड़ी बड़ी के जनाब हिंदुस्तान में सब चंगा सी लेकिन सब चंगा नहीं सी। उसकी वजह यह है कि इंडिया के फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं सुभाष चंद्र गर्ग, उन्होंने आज कहा है जी कि मोदी जी की जो सेकेंड टर्म थी उसमें हिंदुस्तान में लोएस्ट ग्रोथ पीरियड उसने शो किया है इन थ्री डेकेड्स, यानी 30 ईयर्स में इतनी लो ग्रोथ इन हिंदुस्तान की नहीं थी जितनी के मोदी जी के जब से सेकंड टर्म शुरू हुई है उससे है। इन्होंने ये डाटा जो है वो कहते हैं जी कि ये मैंने जो कलेक्ट किया अब ये सारे का सारा अवेलेबल है, फुल 5 ईयर्स का इनका जो डाटा है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 और 2023 से 2024, ये सारे का सारा जो है अब आप वेबसाइट हमारी पे देख सकते हैं। इन्होंने कहा जी के ये सीनियर ऑफिशियल थे, बाय द वे हम आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जब मोदी जी की पहली गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने कहा जी कि जो ग्रोथ है मोदी जी की सेकंड टर्म के अंदर वो 4 से 4.6% के पास है, जबकि ये कह रही है गवर्नमेंट कह रही है कि हमारी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो 6.7 या 7% के पास है, विच इज नॉट ट्रू। इट इज 4.1% के करीब ग्रोथ है, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट इन इंडियन हिस्ट्री सिंस 1991 रिफॉर्म्स जो हम लेकर आए थे। वो कहते हैं जी एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट 2018 से 2019 टू 2023-24 में रहा 4.2%, एंड वो कह रहे हैं जी कि दिस इज अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन, जो कि मोदी जी का अपना ही अदारा है उसके अंडर है, यानी कि मोदी जी की गवर्नमेंट के अलावा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि कुछ इलाकों में जैसे कि कर्नाटका के अंदर बेतहाशा सेंट्रल टैक्स जो है उसको जो है वो कट कर दिया, यानी कि उनको फेवर देने की कोशिश की है, उनका जो था 4.71% था और उसको कट कर दिया 3.65% पे। इसी तरह जो दूसरी सदर्न स्टेट्स थी जो कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड और पॉपुलेटेड है तो वहां पे भी ये कम किया। तो ये खास किस्म का जो एक सलूक है इन स्पेशल स्टेट्स को, क्यों ये स्पेशल सलूक जो है दिखाया जा रहा है, बाकी स्टेट्स जो है उनके लिए ये टैक्सेस कम क्यों नहीं किए जा रहे। लेकिन जनाब दूसरी तरफ जो आईएमएफ है वो कहती है जी कि हिंदुस्तान का जीडीपी जो है वो एक्सपेंड करेगा इस फाइनेंशियल ईयर में, ये जो अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक चलेगा, 6.3% के हिसाब से। सुभाष चंद्र साहब का ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो कहते हैं ये बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ 4 से 4.2% तक ग्रोथ रहेगी। बहरहाल जी पता नहीं आईएमएफ था उनकी इंटरेस्ट है वो क्यों इतनी फ्लेटेड जड़िया ने फिगर्स दे रहे हैं। अच्छा जनाब आपको पता ही, हमने आपको बताया हुआ है कि जो फार्मर्स हैं उन्होंने मोर्चा निकाला हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, तो यहां पे अब जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं उनकी आज फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बात रही, कल भी इनकी बात होती रही है, फोर्थ राउंड ऑफ टॉक्स हैं जो अब इनकी चल रही हैं, ये दिल्ली चलो मार्च, तो अभी तक जो चीजें हैं वो स्टैंड बाय के ऊपर हैं, कोई भी इनकॉन्क्लूसिव रही हैं इनके बीच में जितनी भी मुलाकातें हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोर्थ मीटिंग थी, पहले फरवरी 8, फिर फरवरी 12, फिर फरवरी 15, और आज फिर जो हुई है जो बिल्कुल बेमानी रही। पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो है भगवंत मान साहब, उन्होंने भी आज ये मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने कहा था जी कि गवर्नमेंट ने उनको जो एक एजेंडा दिया है 5-ईयर कॉन्ट्रैक्ट, वो मैं होप करता हूं कि फार्मर्स शायद जो हैं मान जाएंगे, वो इनके लिए बड़े पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन जो ये संयुक्त किसान मोर्चा जो है उनका कहना है कि हम ये पूरे का पूरा जो प्रपोजल है ये रिजेक्ट करते हैं। जब इनकी मुलाकात जो है यूनियन मिनिस्टर साहब चंडीगढ़ में हो रही थी, वो कहते हैं कि इन्होंने कहा है जी कि जो 5 क्रॉप्स हैं हमारी, मेज, कॉटन, अरहर एंड तूर दाल, मसूर दाल ये जो है और उड़द दाल, इसके ऊपर तो एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट जो प्लान के अंडर आपको हेल्प मिलेगी, जिसको कि ये कैलकुलेट कर रहे हैं A2+FL+50%, और इसके अंदर कोई भी जो फैमिली का लेबर है या उनकी जो हार्डवर्क है या जो क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन है उसके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है। फार्मर्स ने आज इनको कहा जी हम रिजेक्ट करते हुए, हम चाहते हैं कि आप हमारी जो जितनी भी हम फसलें पैदा करते हैं उसको कैलकुलेट करें C2+50%, इसमें जो हमारी कॉस्ट है उसको भी पे करें, फैमिली का जो लेबर है उसको भी करें, जो हमारी लैंड की वैल्यू है उसको भी ऐड करें, और जो फिक्स्ड कैपिटल है वो भी हमको दें, तो फिर हमारे लिए ये फेयर रहेगा। यानी कि जिस वक्त अच्छी क्रॉप रहेगी तब तो हम शायद जिंदा रह सकेंगे, जब बैड क्रॉप होगी तो हम नहीं रह सकेंगे, तो इसलिए एक मिनिमम जो प्राइस है वो गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जितनी भी आप प्रोक्योर करेंगे वो भी हमारे से क्रॉप्स वो भी गारंटीड होनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि किसान के पास इतना पैसा हो रहा है। और उन्होंने कहा जी कि अगर मोदी जी की गवर्नमेंट जो है जो उन्होंने प्रोमिसेस पिछली दफा हमारे साथ किए थे अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं तो हम उनको बोलते हैं मोदी जी ऑनेस्टी जरा थोड़ी सी दिखाओ, लोगों के सामने आओ और उनको बताओ कि हमने अपने कोई भी प्रोमिसेस फुलफिल नहीं किए हैं किसानों के तरफ जो हमारे थे। ठीक है पायन खुश हो। और जनाब वीकेंड के ऊपर आपने देखा होगा ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड्स हैं जी, बैफ्टा और इसके अंदर फिर से जो है सबसे ज्यादा ऊपर क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहाइमर रही, जिसको के 7 अवार्ड्स मिले, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट लीड एक्टर चिलियन मर्फी, बेस्ट सपोर्ट एक्टर रॉबर्ट डाउनिंग जूनियर, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी होएन वॉन होयटेमा, बेस्ट एडिटिंग जेनिफर लेन, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर लेडविग गोरेसन, और जो योर्गोस लेथिमोस की पुअर थिंग्स थी उसको फिर जो है यहां पे 5 अवार्ड्स मिले, जिसमें कि लीड एक्ट्रेस एमा स्टोन जो थी उसको भी मिले और बहुत सभी। तो बहुत एक्साइटिंग किस्म का ये इवेंट रहा। आज करण जौहर साहब ने अपनी जो अपकमिंग फिल्म है योद्धा, उसका ट्रेलर इंस्टा के ऊपर रोल आउट किया, जिसमें कि उसमें उन्होंने लिखा कि स्काई इज द लिमिट, लैंडिंग स्ट्रेट टू योर स्क्रीन्स विथ बैंग, योद्धा टीजर आउट नाउ इन सिनेमाज 15th मार्च। ये 1 मिनट लॉन्ग जो है टीजर है, इसके अंदर सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है देखे जा रहे हैं कि हाईजैकर्स और टेररिस्टों के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं एयर इंडिया फ्लाइट को बचाने के लिए। टीजर के अंदर दिशा पाटनी और राशि खन्ना जो है वो भी नजर आती हैं। नसीरुद्दीन शाह माशाल्लाह 73 ईयर्स के एंड स्टिल गोइंग स्ट्रांग, वो आज जो है बात कर रहे थे एट मीर की दिल्ली, शाहजहान आबाद इवॉल्विंग सिटी इन न्यू दिल्ली, उसमें बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि इतनी बकवास और घटिया फिल्में बन रही हैं हिंदी सिनेमा में, मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं कि मैंने अपनी ही हिंदी फिल्में देखनी बिल्कुल छोड़ दी हैं। हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हिंदी सिनेमा के 100 ईयर्स हमने पूरे किए हैं, लेकिन कुछ भी हम ऐसा कंटेंट नहीं बना रहे हैं जो कि वॉचेबल है। हमारा हिंदुस्तानी फूड क्यों इतना ज्यादा पसंद किया जाता है सारी दुनिया में, क्योंकि उसमें सब्सटेंस है, लेकिन हमारी हिंदी में क्यों बाहर के लोग देखते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट कर सकते हैं अपने घर के साथ, लेकिन हमारी अब की जो हिंदी फिल्में हैं उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है एंड आई डोंट वॉच एनी ऑफ द हिंदी फिल्म्स नाउ। ठीक है जी, खुश हो मजते ही हूं, तुसी भी ना देखो। अच्छा जनाब, जलमी के जो स्किपर हैं जो कल हुए मुकाबले बाबर आजम, उन्होंने वैसे तो 68 रन बनाए और 42 बॉल्स, लेकिन फिर भी क्वेटा ग्लेडिएटर ने जो बनाए थे मैसिव 207 रन, उनको ये बीट नहीं कर सके। दिस वाज द सेकंड मैच ऑफ पीएसएल 9 एट कदाफी स्टेडियम लाहौर। ओपनिंग प्लेयर जो है साइम अयूब और बाबर जो थे उन्होंने बनाए 91 for 51, और साइम ने 42 of 26, मोहम्मद हारिस ने सिर्फ 7 बनाए और जो इनकी विकेट्स हैं वो गिरती रही। ग्लैडिएटर के बॉलर्स ने रिस्ट्रिक्ट किया इनको 190 for 6, और ये इन्होंने जीता ये मैच जो है 16 रन से। और इससे पहले जो है जेसन रॉय और साउथ शकील जो है उन्होंने 157 रन का पार्टनरशिप बिल्ड किया था। शकील ने 74 of 47 बॉल्स, रॉय ने 75 of 48 बॉल्स जो है बनाए थे। इसके अलावा जो शेरफैन रदरफोर्ड है उन्होंने 20 for 13, और जलमी के इरशाद जो थे उन्होंने लिए जी 3 विकेट्स फॉर 38 रन। मुल्तान सुल्तान जो है जी उन्होंने हराया कराची किंग्स को बाय 55 रन इन थर्ड पीएसएल 9 मैच एट मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया किंग्स को फॉर 130 for 8, और इनका जो टारगेट था वो 186 था। पेसर मोहम्मद अली ने लिए 3 विकेट्स फॉर 23 अपने डेब्यू के ऊपर ही, और इन्होंने डिसमिस किया डैनियल सैम्स, हसन अली और अमीर हमजा को। डेविड वाइली ने बनाए लिए 2 विकेट्स फॉर 23, अब्बास अफरीदी ने 2 लिए फॉर 16। किंग्स के जो शुएब मलिक थे उन्होंने 54 for 35 बॉल्स बनाए, लेकिन लोग इस पर ज्यादा खुश नहीं थे। शान मसूद ने बनाए 30 of 31, कारन पोलार्ड ने 28 नॉट आउट, डेविड मलान और रीस हेंड्रिक्स ने अपनी जो थी हाफ सेंचुरीज पूरी की। तो यानी कि बड़े एक्साइटिंग किस्म के पीएसएल 9 के मैचेस जो हैं, अगर आपने देखी होगी ओपनिंग सेरेमनी भी बड़ी धांसू थी। एंड जनाब रूकी श्रीलंकन फास्ट बॉलर मिथिशा पथिराना जो हैं उन्होंने 4 विकेट्स ली जनाब जो है अफगानिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू के अंदर ही, यानी डेब्यू समझे क्योंकि ये इनका दूसरा ही तकरीबन मैच है, T20 मैच है, और ये जो इनका मैच ये वाला था ये श्रीलंका का T20 ओपनर था अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो बड़ी मुश्किलों से लेकर वैसे इन्होंने मैच जीता। अफगानिस्तान प्लेड ब्रिलियंटली, 4 रन से ये लोग जीते हैं। तो ये जनाब इन्होंने खेला बड़ा अच्छा। अफगान ओपनर जो थे इब्राहिम जदरान उसने 67 नॉट आउट बनाए, करीम जन्नत 20, पथिराना जो है सिर्फ 21 ईयर्स के हैं उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, और इन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो खतरनाक बॉलिंग की। अफगानिस्तान के जो सीमर हैं फजलुल हक फारूकी उन्होंने 3 विकेट्स लिए, और हसारंगा जो है उसने बनाए 67 और 72 रन की पार्टनरशिप की इसके और समारा विक्रम रामा के बीच में, और इसने बनाए थे 50 of 24 डिलीवरीज। श्रीलंका जो है उसने इससे पहले ओडीआई सीरीज जो है अफगानिस्तान के खिलाफ स्वीप किया है 3-0 से, तो अब ये पहला T20 भी जीत गए हैं, तो हम देखेंगे दूसरे में क्या होएगा। ठीक है जी, یہ تھی ہماری آج کی ساری خبریں اور نیوز.
بس
جی میں تو اور سنی اتنی نیوزیں سنائی ہیں اتنی نیوزیں سنائی ہیں.
تھینک یو سو مچ.
حالانکہ آج میں نے آنا نہیں تھا, آج جو ہے وہ میرا چھٹی کا موڈ تھا پورا, پھر مجھے آپ کا خیال آ گیا. میں نے کہا آپ کو تو گھر سے نکلنا ہی پڑے گا چار پانچ گھنٹے کے لیے, جان چھڑا کے ہیں
بس,
تو بس پھر آپ کے خیال کے لیے میں
اس لیے آپ بھی آ گئی.
بالکل ماجد,
تھینک یو سو مچ. یہ تھی آج کی ہماری خبریں اور بقیہ کی خبریں ان شاء اللہ تعالیٰ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اینڈ اب سے لے کے کل تک کی خبریں ہم آپ کو سنوائیں گے. اب ہاں اب میں آپ کو لے چلتا ہوں پروگرام ان پروگرس ود زیشان, اینڈ زیشان آپ کو انٹرٹین کریں گے اب سے لے کے پوری رات تک, پوری رات 6478724900 پہ آپ سن سکتے ہیں ہمیں, یا eawaz.com پہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں. سب 5:54 پہ آج مغرب کی اذان ہوگی. فی الحال میں لے چلتا ہوں پروگرام ان پروگرس.
تھینک یو بھائی,
تھینک یو سو مچ,
سی یو ٹمارو انشاءاللہ.
آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا ریڈیو 770 AM. ہمارے پروگرام کو ٹورانٹو میں سننے کے لیے ڈائل کیجیے 6478724900, مونٹریال 5149076288. اس کے علاوہ کیلگری, وینکوور, ایڈمنٹن اور ریجائنا کے نمبرز آپ eawaz.com کی ویب سائٹ پر جا کے حاصل کر سکتے ہیں. ہماری لائیو 24 گھنٹے کی نشریات کے لیے وزٹ کیجیے eawaz.com, لائک کریں فیس بک پیج eawaz, ڈاؤن لوڈ کریں فری eawaz آفیشیل ایپ. Radio 770 AM, Voice of Community. For more details, visit eawaz.com.
گم نام ہے ने दिल ने क्या जादू चलाया तुम तो हम पे प्यार आया प्यार आया।
है ये ऐसी जमाना नहीं मानता। बात है ये ऐसी जमाना नहीं मानता, हमको तुम्हारा दीवाना नहीं मानता। ना मैं गुलशन ना मैं तारा ना मैं काजल ना मैं बादल, मैं हूँ साया और तुमको हम पे और प्यार आया। चाहे मुझको जमाना गोली मार दे, अब चाहे मुझको जमाना गोली मार दे, राजा के शिकार को भंवर में उतार दे। आगे जी के क्या लेना है, मेरे दिल ने जो भी मांगा था वो पाया तुमको हम पे प्यार आया। पत्थरों से सर टकराऊं मैं दीवाना, जल जाऊं बनके क्षमा का परवाना। मरना जीना खाना पीना हंसना रोना नहाना धोना सोना उड़ना चलना पिन्ना आना जाना, हम दीवाने ने मोहब्बत में बुलाया हमको तुम पे चार आया।
किसी के इंतजार का दिन ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का किसी के इंतजार